उन्होंने धीरे धीरे सोच में डूबे हुए भोजन किया। बातचीत के दौर के बीच बीच में छोटी खामोशियां भी आती रहीं। जादू एक बार टूटा तो कहने को बहुत कुछ था, फिर भी ऐसे क्षण आते जब बोलना उनके मौन के लंबे युगल गान की महज संगत बन जाता। आर्चर जानबूझकर अपनी बातें नहीं टाल रहा था, पर उसकी कहानी का एक शब्द भी छोड़ना नहीं चाहता था, सो निजी मामले नहीं छेड़े। मेज पर झुकी, थोड़ी जुड़े हाथों पर टिकाए, वो उसे बीते 1.5 साल का हाल सुनाती रही। वो उस चीज से थक चुकी थी जिसे लोग सोसाइटी कहते हैं। न्यूयॉर्क दयालु था, दबा देने की हद तक मेहमान नवाज। वो स्वागत वो कभी नहीं भूलेगी, पर नयापन बीत जाने पर उसे लगा कि वो इतनी अलग है कि न्यूयॉर्क की दिलचस्पियों में मन नहीं लगा सकती। इसलिए उसने वॉशिंगटन जाने की ठानी, जहां कहते हैं कि ज्यादा तरह के लोग और विचार समा जाते हैं। वो वही बस कर बेचारी मेडोरा के लिए घर बनाना चाहती थी, जिसने बाकी रिश्तेदारों का धीरज ठीक उसी समय चुका दिया था जब उसे देखभाल की और विवाह के खतरों से हिफाजत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर डॉक्टर कार्वर से डर नहीं लगता, सुना है वो ब्लैंकर के घर आपके साथ ठहरे हैं। वो मुस्कराई। अरे कार्वर वाला खतरा टल गया, वो बहुत चतुर आदमी है, उसे अपनी योजनाओं के लिए बस एक अमीर पत्नी चाहिए और मेडोरा तो महज अच्छे विज्ञापन का काम देती है, एक धर्मांतरित के रूप में। किस चीज में धर्मांतरित? हर तरह की नई सनक भरी सामाजिक योजनाओं में। पर जानते हैं, ये मुझे हमारे मित्रों में दिखने वाली परंपरा की अंधी नकल से, वो भी परायों की परंपरा की नकल से ज्यादा दिलचस्प लगती है। अमेरिका खोजकर उसे किसी और देश की नकल बना देना कितनी नादानी है ना? उसने मुस्कराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कोलंबस ने इतनी मशक्कत सिर्फ इसलिए की थी कि सेल्फ्रिज मेरी दंपति के साथ ओपेरा देखने जाए? आर्चर का चेहरा तप गया। और ब्यूफर्ट से भी ये बातें करती हैं? उसने अचानक पूछा। बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं, पर पहले करती थी और वो समझते थे। आह, यही तो मैं हमेशा कहता था, आपको हम पसंद नहीं, और ब्यूफर्ट इसलिए पसंद है कि वो हमसे बिल्कुल अलग है। उसने खाली कमरे, वीरान समुद्र तट और किनारे किनारे बसे सफेद गांव घरों की कतार पर नज़र दौड़ाई। हम जानलेवा हद तक उबाऊ है, न व्यक्तित्व, न रंग, न विविधता। मैं सोचता हूँ, वो फूट पड़ा, आप लौट क्यों नहीं जाती? उसकी आंखें गहरा गईं और आर्चर को गुस्से भरे जवाब की आशंका हुई, पर वो चुप रही, जैसे उसकी बात को मन में तौल रही हो। और आर्चर डरने लगा कि कहीं वो ये न कह दे कि वो खुद भी यही सोचती है। आखिर उसने कहा, शायद आपकी वजह से। ये इकबाल भावना से रहित सपाट सुर में हुआ, सुनने वाले के अहं को जरा भी न सहलाने वाले ढंग से। आर्चर कनपटियों तक लाल हो गया, पर हिलने या बोलने की हिम्मत न कर सका। उसका वो वाक्य किसी दुर्लभ तितली सा था, जरा सी हरकत पर उड़ जाए, पर छेड़ा न जाए तो और तितलियां खिंची आए। कम से कम, वो आगे बोली, आप ही ने मुझे दिखाया कि एक रास्ता के नीचे ऐसी बारीक संवेदनशील और सुकुमार चीजें छिपी है कि मेरी पुरानी जिंदगी की सबसे प्यारी चीजें भी उनके आगे सस्ती लगने लगी। पता नहीं समझा पा रही हूँ या नहीं। उसने उलझन में माथा सिकोड़ा, पर अब जाकर समझ आया है कि सबसे परिष्कृत सुखों के लिए कभी कभी कितनी कठोर, कितनी कुरूप कीमत चुकानी पड़ती है। परिष्कृत सुख, उन्हें कभी पाया, यही क्या कम है? वो यही कहना चाहता था, पर उसकी आंखों की विनती ने उसे चुप करा दिया। मैं, वो आगे बोली, आपके साथ और अपने साथ भी ईमानदार होना चाहती हूँ। बहुत दिनों से इस मौके की उम्मीद कर रही थी। आपको बताना चाहती थी कि आपने मेरी कितनी मदद की, आपने मुझे क्या बना दिया। आर्चर भोहे सिकोड़े एक टक देखता रहा, फिर हंसकर उसकी बात काट दी। और आपके ख्याल से आपने मुझे क्या बना दिया? वो जरा पीली पड़ गई। आपको? हाँ, क्योंकि आपने मुझे कहीं ज्यादा बदला है जितना मैंने आपको। मैं वो आदमी हूँ जिसने एक औरत से शादी इसलिए की कि दूसरी औरत ने कहा था। उसकी पीली रंगत पर पल भर को लाली दौड़ गई। आपने वादा किया था आज ऐसी बातें नहीं करेंगे। आह, औरतें सब एक सी, कोई भी बुरे मामले का सामना नहीं करना चाहती। उसने आवाज धीमी की, तो क्या ये मे के लिए बुरा है? खिड़की के पास खड़ा, उठे हुए पल्ले पर उंगलियां थपथपाता आर्चर रोम रोम में वो तड़पती कोमलता महसूस कर रहा था जिससे उसने अपनी बहन का नाम लिया था। यही तो है जो हमें हमेशा सोचना चाहिए। आपने खुद ही तो दिखाया था, है ना? उसने जोर दिया। मैंने खुद दिखाया था, उसने दोहराया, खाली निगाहें अब भी समुद्र पर। और अगर नहीं, वो अपनी सोच को दर्द भरी लगन से आगे बढ़ाती रही। अगर त्याग करना सबसे अच्छा खो देना इस लायक नहीं कि दूसरों को मोहभंग और दुख से बचाया जा सके, तो जिन बातों के लिए मैं घर लौटी, जिनके कारण मेरी दूसरी जिंदगी इतनी नंगी, इतनी दरिद्र लगी थी, क्योंकि वहां कोई उनकी परवाह नहीं करता था, वो सब झूठ या सपना ही तो ठहरेगा। वो अपनी जगह से हटे बिना मुड़ा, और उस सूरत में आपके न लौटने की कोई वजह ही नहीं बचती। उसने उसकी जगह नतीजा निकाला। उसकी आंखें बदहवास होकर उससे लिपटी थी। ओह, सचमुच कोई वजह नहीं? नहीं, अगर आपने अपना सब कुछ मेरी शादी की कामयाबी पर लगा दिया है, उसने उग्र होकर कहा, मेरी शादी ऐसा तमाशा नहीं बनने वाली जिसके लिए यह रुका जाए। वो चुप रही और वो कहता गया, क्या फायदा, आपने मुझे पहली बार असली जिंदगी की झलक दी और उसी क्षण नकली जिंदगी जारी रखने को कहा। ये इंसान की बर्दाश्त के बाहर है, बस इतनी सी बात है। ओह, ऐसा मत कहिए, मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ। वो रो पड़ी, उसकी बाहें मेज के सहारे ढलक गईं और वो बैठी रही, अपना चेहरा उसकी निगाहों के हवाले किए, जैसे किसी जानलेवा खतरे को न्योत रही हो। वो चेहरा उसे पूरा पूरा उघाड़ रहा था, मानो वो उसकी आत्मा ही हो। आर्चर अवाक रह गया उस चेहरे के अचानक कहे पर हक्का बक्का, तुम भी? ओह, इतने समय से तुम भी? जवाब के बदले उसने आंखों में उमड़े आंसुओं को छलक कर धीरे धीरे बहने दिया। कमरे की आधी चौड़ाई अब भी उनके बीच थी और दोनों में से किसी ने उसे पाटने की चेष्टा नहीं की। आर्चर को उसकी देहधारी उपस्थिति के प्रति अपनी अजीब बेरुखी पर अचरज हुआ। शायद उसे उसका होना भी न खटकता अगर मेज पर छूटे उसके हाथों में से एक ने उसकी नजर न खींची होती, ठीक वैसे जैसे उस दिन 23वीं स्ट्रीट के छोटे घर में उसने उसी हाथ को घूरा था ताकि चेहरा न देखना पड़े। अब उसकी कल्पना उस हाथ के गिर्द भंवर के किनारे सी चक्कर काट रही थी, पर उसने पास जाने की कोशिश तक न की। वो उस प्रेम को जानता था जो दुलार से पलता और दुलार को पालता है, पर हड्डियों तक धसी ये लगन ऐसी सतही तृप्तियों से भरने वाली नहीं थी। उसका एकमात्र भय था कोई ऐसी हरकत कर बैठना जो उसके शब्दों की गूंज और छाप मिटा दे। उसका एकमात्र विचार था कि अब वो फिर कभी पूरी तरह अकेला महसूस नहीं करेगा। पर अगले ही पल बर्बादी और विनाश के बोध ने उसे दबोच लिया। वे इतने पास थे, सुरक्षित, बंद कमरे में, फिर भी अपनी अपनी नियति से इस कदर बंद की मानो दुनिया के दो छोरों पर हों। क्या फायदा, आपको तो लौट ही जाना है, वो बेबसी से फूट पड़ा। उसके शब्दों के पीछे बेचैन पुकार थी, आपको कैसे रोकूं? वो पलकें झुकाए निश्चल बैठी रही, अभी नहीं लौटूंगी, अभी नहीं, तो किसी दिन, कोई दिन जो आपने पहले से सोच रखा है। तब उसने अपनी सबसे निर्मल आंखों से उसे देखा, वादा करती हूँ, जब तक आप डटे रहेंगे, नहीं, जब तक हम एक दूसरे को यूं सीधे देख सकते हैं। आर्चर कुर्सी में धस गया, उसका उत्तर दरअसल कह रहा था, आपने उंगली भर भी हिलाई तो मुझे वापस भेज देंगे, उन सारी घिनौनी चीजों की ओर जो आप जानते हैं, उन सारे प्रलोभनों की ओर जिन्हें आप आधा अधूरा भापते हैं। उसने ये इतना साफ समझा जैसे उसने कह ही दिया हो, और इस विचार ने उसे मेज के अपनी ओर वाले सिरे पर एक भावुक श्रद्धामय समर्पण के साथ रोके रखा। आपके लिए ये भी कोई जिंदगी है, वो कराहा, ओह, जब तक ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है चलेगी, और मेरी जिंदगी आपकी का हिस्सा है, उसने सिर हिलाया, और बस यही सब है हम दोनों के लिए, तो यही सब है ना? उस क्षण आर्चर उसके चेहरे की मिठास के सिवा सब कुछ भूलकर उछल खड़ा हुआ। वो भी उठी, न उसके स्वागत में, न भागने को, बल्कि शांत भाव से, जैसे सबसे कठिन काम निपटा चुकी हो और अब केवल प्रतीक्षा बाकी हो। इतनी शांति से कि जब वो पास आया तो उसके बड़े हुए हाथों ने उसे रोका नहीं, राह दिखाई। उसके हाथ उसके हाथों में आ गए, बाहें तनी हुई पर कठोर नहीं, उसे बस इतनी दूरी पर थामे रहीं कि उसका समर्पित चेहरा बाकी बातें कह सके। वे कितनी देर यों खड़े रहे, लंबा था वो समय या छोटा, कौन जाने, पर उसकी खामोशी उसकी हर बात कह देने को काफी थी। और आर्चर ने केवल एक बात गांठ बांधी, ये मिलन आखिरी नहीं बनने देना है। उसे उन दोनों का भविष्य उसके हाथों में सौंपना था, और बस यही मांगना था कि वो उसे कसकर थामे रहे। उदास मत होइए मेरी खातिर, उसने कांपती आवाज में कहा और हाथ खींच लिए। आर्चर ने पूछा, आप वापस नहीं जाएंगी ना? नहीं जाएंगी? मानो बस यही एक बात हो जो वो किसी सूरत सह नहीं सकता। वापस नहीं जाऊंगी, उसने उत्तर दिया और मुड़कर दरवाजा खोल साझा भोजन कक्ष की ओर बढ़ गई। शोरगुल करते शिक्षक घाट जाने को सामान समेट रहे थे। रेत के पार सफेद स्टीमर बंधा दिखता था और धूप भरे पानी पर बोस्टन धुंध की धूमिल रेखा सा फैला था।